दूसरा अध्याय, जनसंख्या आंकड़े, संग्रह की विधियां एंड स्रोत। पॉपुलेशन डाटा, मेथड्स एंड सोर्स ऑफ कलेक्शन। आंकड़ों की आवश्यकता, नीड ऑफ पॉपुलेशन डाटा। वर्तमान समय में अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति जनसंख्या भूगोल में भी मात्रात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति में तीव्रता आई है, जिसके लिए उपयुक्त तथा विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धि अनिवार्य होती है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विषय की आवश्यकता तथा उद्देश्य की पूर्ति हेतु अलग अलग तकनीकों तथा विधियों द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। एक जनसंख्या भूगोलवेत्ता को जनसंख्या के विविध लक्षणों के सम्यक अध्ययन के लिए कई प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कई विधियों तथा स्रोतों से एकत्रित करना पड़ता है। भौगोलिक अध्ययन किसी स्थान या क्षेत्र से संबंधित होते हैं, अतः अध्ययन क्षेत्र के आकार के अनुसार सर्वप्रथम आंकड़ों के संग्रह की विधि के चुनाव की समस्या सम्मुख आती है। जब भूगोल का विद्यार्थी छोटे पैमाने पर कार्य करता है, क्षेत्र सीमित होने के कारण वह आवश्यक आंकड़े स्वयं एकत्रित करने में समर्थ हो सकता है। ऐसे आंकड़े सर्वाधिक विश्वसनीय तथा उपयोगी होते हैं। लघु क्षेत्र के संबंध में व्यापक सूचनाएं सरकारी प्रकाशनों या अभिलेखों से प्रायः नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। यही कारण है कि लघु स्तरीय अध्ययनों जैसे ग्राम, विकासखंड, लघु नगर आदि के लिए जनसंख्या आंकड़ों को शोधकर्ता स्वयं अथवा अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर एकत्रित करता है। विस्तृत क्षेत्र से संबंधित जनसंख्या आंकड़ों को व्यक्तिगत स्तर पर एकत्रित करना प्रायः संभव नहीं हो पाता है। अतः किसी बड़े प्रदेश या देश के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़े विविध प्रकाशनों तथा सरकारी एवं गैर सरकारी अभिलेखों से प्राप्त किए जाते हैं। बृहद स्तरीय अध्ययनों के लिए भूगोल के विद्यार्थी को जिन सूचनाओं की आवश्यकता होती है, उसके लिए सामान्यतः राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों और जनसंख्या रिपोर्टों का सहारा लेना अनिवार्य हो जाता है। यद्यपि आज विश्व के अधिकांश देशों में जनगणनाएं नियमित रूप से कराई जाने लगी हैं, किंतु विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई संग्रह की तकनीकों और आधार समय में पूर्णतः एकरूपता नहीं पाई जाती है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या के तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाई होती है और साथ ही उनकी विश्वसनीयता भी संदेहात्मक हो सकती है। इसका मूल कारण यह है कि विश्व के सभी देश हर प्रकार के आंकड़े एकत्रित नहीं करते हैं और उनकी गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता भी प्रायः एक समान नहीं होती है। अतः जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं को अध्ययन क्षेत्र की माप, उपलब्ध समय और धन तथा अध्ययन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों का संग्रह और उनका प्रयोग करना आवश्यक होता है। जनसंख्या आंकड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा। संग्रह प्रक्रिया के अनुसार समस्त जनसंख्या आंकड़ों को मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी आंकड़े सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डाटा वे आंकड़े जो प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। इन्हें मौलिक आंकड़ा, बेसिक डाटा भी कहा जाता है। ऐसे आंकड़े कच्चे माल के रूप में होते हैं जिनके प्रयोग से द्वितीयक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। सांख्यिकीय व्यवहार में आ जाने अथवा सांख्यिकीय प्रक्रमण से प्राथमिक आंकड़ों का मौलिक स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। किसी व्यक्तिगत सर्वेक्षक या संस्था द्वारा प्रत्यक्ष गणना, मौखिक अन्वेषण, तालिका तथा प्रश्नावली और स्थानीय रिपोर्टों के माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। किसी क्षेत्र में नियत समय पर गणना द्वारा प्राप्त पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या, बच्चे, युवक युवतियों तथा वृद्धों की संख्या, साक्षर व्यक्तियों की संख्या, श्रमिकों की संख्या आदि प्राथमिक आंकड़ों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार किसी निश्चित समयावधि में जन्मे शिशुओं, मृत व्यक्तियों, प्रवासियों आदि की संख्याओं से संबंधित आंकड़े भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका संग्रह पहली बार किया जाता है और वे अभी तक सांख्यिकी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते हैं। द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। द्वितीयक आंकड़े वे होते हैं जो प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित होते हैं और सांख्यिकीय व्यवस्था के अंतर्गत कम से कम एक बार अवश्य गुजर चुके हों। ये प्राय तैयार आंकड़ों के रूप में होते हैं। कच्चे माल के रूप में प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग करके विश्लेषण और तथा निर्वचन के उद्देश्य से विभिन्न सांख्यिकी विधियों द्वारा द्वितीयक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। सांख्यिकी प्रक्रिया द्वारा प्राथमिक आंकड़ों के स्वरूप में परिवर्तन से द्वितीयक आंकड़े निर्मित होते हैं। द्वितीयक आंकड़े सामान्यतः योग, प्रतिशत, अनुपात, सूचकांक आदि के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। जनसंख्या का घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, स्त्री पुरुष अनुपात, साक्षरता दर, निर्भरता अनुपात, ग्रामीण नगरीय अनुपात आदि द्वितीयक आंकड़ों के उदाहरण हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कई दशाओं में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में बहुत कम अंतर पाया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहित जो आंकड़े उसके लिए प्राथमिक होते हैं, वही दूसरे व्यक्ति या संस्था के पास पहुँचने पर द्वितीयक हो सकते हैं। जनसंख्या आंकड़ों के संग्रह की विधियां एवं स्रोत, मेथड एंड सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डाटा। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां प्राय भिन्न भिन्न होती हैं, जिसका कारण यह है कि प्राथमिक आंकड़े के लिए संख्याओं को प्रथम बार एकत्रित किया जाता है, जबकि द्वितीयक आंकड़े के लिए संकलित की गई सामग्री के प्रयोग द्वारा कार्य का संचालन किया जाता है। जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के संग्रह की अनेक विधियां हैं। आंकड़ों के संग्रह के लिए किसी विधि के चयन पर जिन कारकों का प्रभाव होता है, उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, धन की उपलब्धि। जब अन्वेषक के पास आवश्यक वित्तीय संसाधन अपर्याप्त होते हैं, तब वह कम खर्चीली विधियों का ही प्रयोग करने के लिए बाध्य होता है, भले ही उसके परिणाम तथा विश्वसनीयता का स्तर उच्च न हो। इसके विपरीत, धन उपलब्ध होने पर उत्तम तथा व्यय साध्य विधियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, समय सीमा। कोई भी अनुसंधानकर्ता अपने पास उपलब्ध समय के अनुसार ही आंकड़ों को एकत्रित करने की किसी विधि का चयन करता है। समय कम होने पर प्रायः द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, शोध की प्रकृति एवं संबंध एवं उद्देश्य। शोध कार्य की प्रकृति तथा आंकड़ों को एकत्रित करने के उद्देश्य का भी एक उल्लेखनीय प्रभाव है। गहन शोध के लिए प्रत्यक्ष व्यक्तिगत विधि उपयुक्त होती है, जबकि विस्तृत शोध के लिए तालिका और प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा, अध्ययन क्षेत्र का आकार। अध्ययन क्षेत्र के आकार का भूगोलवेत्ता के लिए अधिक महत्व होता है। क्षेत्र का आकार छोटा होने पर शोधकर्ता स्वयं सर्वेक्षण करके आवश्यक आंकड़े एकत्र कर सकता है, किंतु क्षेत्रीय आकार विस्तीर्ण होने पर सामान्यतः स्थानीय रिपोर्टों अथवा प्रकाशित द्वितीय आंकड़ों पर निर्भर होना पड़ता है। एक शोधकर्ता किसी ग्राम से संबंधित प्राथमिक आंकड़े प्राप्त कर सकता है, किंतु संपूर्ण देश के विषय में उसे द्वितीयक आंकड़ों का सहारा लेना आवश्यक होता है। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं: प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सर्वेक्षण, डायरेक्ट पर्सनल सर्वे, परोक्ष मौखिक सर्वेक्षण, इनडायरेक्ट ओरल सर्वे, अनुसूची तथा प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण, सर्वे बाय शेड्यूल एंड क्वेश्चनर, स्थानीय प्रतिवेदनों द्वारा सर्वेक्षण, सर्वे बाय लोकल रिपोर्ट, नमूना सर्वेक्षण सैंपल सर्वे। पहला, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सर्वेक्षण डायरेक्ट पर्सनल सर्वे। इसके अंतर्गत शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न जनसंख्या लक्षणों से संबंधित आंकड़े स्वयं एकत्रित करना होता है। इसके लिए वह क्षेत्र में स्वयं जाता है और उन व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से मिलता है जिनसे सूचनाएं एकत्रित करनी होती है। यह विधि सामान्यतः लघु क्षेत्रों तथा गहन अनुसंधानों के लिए उपयुक्त होती है। इस विधि से आंकड़े एकत्रित करने में समय और धन दोनों प्रायः अधिक लगते हैं और इस पर सर्वेक्षक के विचार व्यक्तिनिष्ठता का भी प्रभाव हो सकता है। अतः इस विधि के प्रयोग के लिए शोध क्षेत्र को छोटा और अन्वेषण को विवेकशील, निष्पक्ष और पूर्ण विश्वसनीय होना चाहिए। दूसरा, परोक्ष मौखिक सर्वेक्षण इनडायरेक्ट ओरल सर्वे। अनुसंधान क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होने अथवा अन्य कारणों से जब प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सर्वेक्षण करना कठिन होता है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत अन्वेषण विषय पर जानकारी रखने वाले अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करके वांछित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। इस विधि से एकत्रित आंकड़ों की शुद्धता, प्रयुक्त व्यक्तियों के ज्ञान, विचार, निष्पक्षता आदि पर निर्भर करती है। अतः ऐसे व्यक्तियों के चुनाव में अत्यंत सतर्कता की आवश्यकता होती है। तीसरा, अनुसूची तथा प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण। आंकड़ों को एकत्रित करने की इस विधि के अंतर्गत शोध समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है और उसे प्रकाशित किया जाता है। इस सूची को संबंधित व्यक्तियों, ज्ञापकों या संस्थाओं को भेजा जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि उस सूची को भली प्रकार भरकर अन्वेषक के पास लौटा दें। ज्ञापकों को प्रश्नों के सही उत्तर देने में सहायता के लिए गणनाकारों की सहायता ली जा सकती है। इस विधि का लाभ यह है कि इससे अपेक्षाकृत कम समय और कम खर्च से ही अधिक विस्तृत क्षेत्र के आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। इसमें आंकड़ों की शुद्धता का मूल उत्तरदायित्व ज्ञापकों पर होता है, अतः उनका शिक्षित तथा जागरूक होना आवश्यक होता है। चौथा, स्थानीय रिपोर्टों द्वारा सर्वेक्षण। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह की इस विधि में सूचनाओं को गणनाकारों द्वारा एकत्रित नहीं किया जा सकता है, बल्कि उन्हें स्थानीय अभिकर्ताओं, एजेंट्स तथा पत्रकारों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसे वे अपने स्वेच्छा से प्रदान करते हैं। ऐसे आंकड़ों में विश्वसनीयता की कमी पाई जाती है, अतः इस विधि का प्रयोग उस अवस्था में किया जाता है जब अन्वेषण का उद्देश्य स्थूल अनुमान लगाना हो और अधिक शुद्धता आवश्यक न हो। यह विधि उपयुक्त अन्य विधियों की तुलना में कम खर्चीली और बहुत सरल होती है। पांच, नमूना सर्वेक्षण। नमूना या प्रतिदर्श सर्वेक्षण में समष्टि में से कुछ चुने हुए सदस्यों के विषय में ही सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और उनके आधार पर ही संपूर्ण समष्टि के लिए निष्कर्ष निकाला जाता है। किसी विस्तृत क्षेत्र के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के संग्रह में इस विधि के प्रयोग से समय और व्यय अपेक्षाकृत बहुत कम लगता है। इस प्रकार एकत्रित आंकड़ों की विश्वसनीयता और उपयोगिता मुख्यतः नमूना या प्रतिदर्श सैंपल के चुनाव की उपयुक्तता पर निर्भर होती है। प्रतिदर्श चयन की मुख्यतः दो विधियां हैं, स्व उद्देश्य प्रतिचयन, परपोजिव सैंपलिंग, यादृच्छिक या दैव प्रतिचयन, रैंडम सैंपलिंग। स्व उद्देश्य प्रतिचयन में अन्वेषक समष्टि में से कुछ इकाइयों का चयन अपनी आवश्यकता अनुसार स्वयं करता है। इसके विपरीत रैंडम सैंपलिंग में नमूना इकाइयों का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि समष्टि की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना रहती है। यह नमूना इकाई के चुनाव की लॉटरी विधि है, जिस पर अन्वेषक के विचार या उद्देश्य का प्रभाव नहीं होता है। नमूना सर्वेक्षण दो प्रकार से अधिक उपयोगी है। यह मौलिक आंकड़ों को एकत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, यह पूर्व एकत्रित सूचनाओं का सही मूल्यांकन करने में सहायक होता है। द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। द्वितीयक आंकड़े वे होते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले ही एकत्रित, संकलित तथा विश्लेषित किए गए होते हैं। अतः सूचना संग्रह के समय उत्पन्न होने वाली समस्याएं इस प्रकार के आंकड़ों के संग्रह में नहीं उपस्थित होती हैं। द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित अथवा अप्रकाशित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये आंकड़े दूसरे के द्वारा संग्रहित होते हैं, अतः इनके उपयोग से पहले आंकड़ों के सत्यापन की जांच के साथ ही उनका संवातन, एडिटिंग एवं समीक्षा स्क्रूटनी भी आवश्यक होती है। द्वितीयक आंकड़े की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, विश्वसनीयता। आंकड़ों का विश्वसनीय होना आवश्यक होता है। इसके लिए कई प्रकार की जांच आवश्यक होती है। आंकड़ों की विश्वसनीयता के लिए जिन पक्षों की जांच की जाती है उनमें प्रमुख हैं संग्रहकर्ता तथा आंकड़ों के स्रोत, बी आंकड़े संग्रह करने की विधि, सी आंकड़े संग्रह की अवधि, डी व्यक्ति निष्ठता की संभावना, ई संकलन का उद्देश्य आदि। दूसरा, उपयुक्तता। जिन द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किए जाए वे वांछित शोध कार्य के लिए उपयुक्त होने चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े एक प्रकार के शोध कार्य में उपयोगी होते हैं वे अन्य प्रकार के शोध कार्य के लिए प्रयुक्त पूर्णतः अनुपयुक्त हो सकते हैं। तीसरा, पर्याप्तता। आंकड़ों के विश्वसनीय और उपयुक्त होने के साथ ही शोध कार्य के लिए उनका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना भी आवश्यक है। जिस क्षेत्र का अध्ययन करना हो आंकड़े उसी से संबंधित होने चाहिए। यदि आंकड़े ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जिनका विस्तार वर्तमान अध्ययन क्षेत्र से बहुत कम हो अथवा बहुत अधिक हो तो ऐसे आंकड़ों का प्रयोग बिना आवश्यक संशोधन के नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही आंकड़े उपयुक्त समय या समय अवधि के अनुसार होने चाहिए, जैसे किसी मासिक अध्ययन के लिए वार्षिक स्तर पर एकत्रित आंकड़े उपयुक्त नहीं हो सकते। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के यथावत प्रयोग से गलत परिणाम हो सकते हैं। अतः जब तक ऐसे आंकड़ों की विश्वसनीयता, उपयुक्तता और पर्याप्तता की भली प्रकार जांच न कर ली जाए उनका प्रयोग वांछनीय नहीं होता है। ऐसे आंकड़ों को उपयोगी बनाने के लिए उनके संपादन और समीक्षा की आवश्यकता होती है।